उसमें गर्ल्स में आवाज आ रही है। कोई जवाब नहीं दे रहा तो अब तो यही समझेंगे ना कि नहीं आवाज आ रही। कोई दे दे जवाब, जा ही नहीं, नहीं आ रही, कैसे जवाब नहीं। गर्ल्स में आवाज नहीं आ रही,
आ रही है,
मतलब है कुछ गड़बड़ है इसमें, क्या करें। इसका कोई माइक वाइक का मसला तो नहीं?
शेख आ रही है
माइक, हाँ अनम्यूट तो है लेकिन सेम है सिस्टम। हाँ वहां पे आवाज नहीं आ रही है, हमें बता रहे हैं कि हाँ कर ले। अच्छा अभी आवाज आ रही है यहाँ पे गर्ल्स में? नहीं वो तो शायद पहले भी हो रहा था बाइक के ऊपर। आवाज आ रही है था गर्ल्स में? नहीं नहीं आ रही, ठीक नहीं ऑन गर्ल्स ये बता रहे के भाई। नहीं अभी इन्होंने कहा है कि चैट ऑप्शन इज डिसेबल फॉर सम रीजन। ओ चैट ऑप्शन डिसेबल किया हुआ है यहाँ पे, इस वजह से वो जवाब नहीं दे पा रहे। नहीं आप तो नहीं कर सकते, एडमिन है तो देख लो, वो लोग चैट नहीं कर सकते। अच्छा अब इनेबल हो गया, अच्छा हो गया इनेबल उनका भी, फिर ठीक है ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। चले अब शुरू करते हैं जरूर। الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما آپ کے ڈیسک کے ساتھ بہت اچھے لگ رہے ہیں ہمیں معاملے لیکن ادھر بیٹھ جائیں گے نا تو ایسا ہوگا کلاس لے رہے ہیں ہمیں کچھ وہ بھی ہونی چاہیے ادھر بیٹھ ڈیسک کے ساتھ ٹھیک ہے تو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کلاس ہم شروع کر رہے ہیں یہ انشاءاللہ رمضان المبارک سے پہلے ہماری آخری کلاس ہے تو یہاں پر ہم روکیں گے اور پھر رمضان المبارک کے بعد اس کلاس کو دوبارہ شروع کریں گے اللہ کی توفیق سے ٹھیک ہے تو اس کلاس میں ہماری آخری ڈسکشن کس ٹاپک پہ چل رہی تھی اینی ون کیا تھی ٹاپک کیا تھا میجک کس میں مون سپلٹ کے اوپر تھا ہاں معجزات کسی نے لکھا معجزات کسی نے بتایا میجک اور کوئی کہہ رہا ہے مون سپلٹ ہاں تو بیسیکلی جو ٹاپک تھا وہ یہی تھا کہ جو کافر لوگ تھے نبی علیہ السلام سے عجیب عجیب باتیں ڈیمانڈ کرنا شروع ہو گئے تھے تو ایک انہوں نے ڈیمانڈ یہ کری کہ یہ جو چاند نظر آ رہا ہے فل مون تو اس کو آپ ذرا توڑ کے تو دکھائیں ہے نا اس طرح سے جیسے لوگ کہتے ہیں نا تو نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کری اور پھر انگلی کا اشارہ کیا تو اس سے وہ مون جو ہے وہ سپلٹ ہو گیا چاند ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا دو ٹکڑے ہو گیا تو اس کے پھر تحت ہم نے آپ کو معجزات کی ڈیفینیشن بتائی تھی کرامات اینڈ استدراج اور پھر اس کے بعد لاسٹ کلاس میں ہم نے آپ کو میجک کے بارے میں کچھ بتایا تھا ٹھیک ہے نا اور یہ بتایا تھا کہ میجک اور ان تین چیزوں میں فرق ہے معجزہ کرامت استدراج یہ تینوں چیزیں کیا ہوتی ہیں یہ وداؤٹ مینز ہوتی ہیں اسباب کے بغیر ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور جو میجک ہوتا ہے وہ اسباب کے ساتھ کیا جاتا ہے کسی نہ کسی چیز کو یوز کر کے کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ڈسکشن ساری ہے لاسٹ کلاس میں جی یہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ استدراج ہے یا یہ میجک ہے یہ جو پتا کیسے چلے گا इसका जवाब मूसा अलैहिस्सलाम वाली स्टोरी के अंदर है, ठीक है, कि जब मूसा अलैहिस्सलाम और मैजिशियंस जादूगरों का मुकाबला हुआ था, तो जादूगरों ने रस्सियां डाली थी और फिर वो लोगों को सांप नजर आनी शुरू हो गई थी, है ना। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या किया था, मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा जमीन के ऊपर डाला था, ठीक है, तो असा जो है वो अज़हा बन गया था, ठीक है। तो उस वक्त जो है वो क्या सारे लोग जो बाहर बैठे हुए थे, पूरा एक वो था ना जिस तरह क्रिकेट स्टेडियम होता है, तो उस तरह का शायद स्टेडियम होगा जिसमें ऐसे सारे लोग बैठे हुए होंगे, तो क्या सारे लोग बोलना शुरू हो गए थे कि ये मैजिक है या ये कि मैजिक नहीं है, है? सारे लोग बोलना शुरू हो गए थे, फिरौन बोलना शुरू हो गया था, नहीं, किसी ने नहीं कहा था कि ये तो मैजिक नहीं है, किसने कहा था कि ये मैजिक नहीं है, मैजिशियंस ने कहा था, है ना, जो जादूगर खुद थे ना उन्होंने कहा था कि ये तो मैजिक नहीं है, ये तो अल्लाह ताला ही कर सकते हैं ऐसा काम, जो इन्होंने किया है ना ये मैजिक नहीं है। तो जो यहाँ पर हमारे दाऊद भाई हैं उनका सवाल ये था कि कैसे पता चलेगा कि ये चीज मैजिक है या ये चीज मैजिक नहीं है, तो इसका जवाब ये है कि जो मैजिक के एक्सपर्ट्स होते हैं ना, एक्सपर्ट्स जिनको कि पता है कि मैजिक कैसे किया जाता है और मैजिक से क्या होता है, वो बता सकते हैं कि जी ये चीज मैजिक है या ये चीज मैजिक नहीं है, ठीक है, एक्सपर्ट्स, यू नीड टू बी एन एक्सपर्ट टू टेल, ठीक है। तो ये फिर वही बात आ गई जो कि कुछ क्लासेस पहले एक बात हुई थी, किसी बच्चे ने, हमारे मुस्तफा भाई थे वो, उन्होंने सवाल किया था, दूसरे वाले मुस्तफा, तो उन्होंने सवाल किया था कि अल्लाह ताला ने सब कुछ क्यों बनाया, जबकि अल्लाह ताला को पहले ही सब कुछ पता था कि ऐसा होने वाला है, ऐसा होने वाला है, तो क्यों बनाया ना। तो उस वक्त भी आप लोगों को यही जवाब दिया था कि हर बात जो है ना वो हर इंसान के समझ में नहीं आ सकती, हर बंदा नहीं समझ सकता हर बात को, तो उसके लिए जो है वो एक एक्सपर्टीज की जरूरत पड़ती है, ठीक है। जैसे कि वो न्यूटन्स लॉ ऑफ, वो बताया था कि न्यूटन की एक चीज होती, नहीं, आइंस्टाइन की एक चीज होती है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, बड़ी अजीब सी चीज होती है, ठीक है। तो अब वो आप किसी बच्चों को समझाना शुरू कर दें तो बच्चों को बिल्कुल समझ में नहीं आएगी, लेकिन किसी ऐसे आदमी को या लड़के को जिसने कि फिजिक्स पढ़ी हुई हो, साइंस पढ़ी हुई हो और उसने 12 ग्रेड्स 11 ग्रेड्स पास किए हुए हो, उसको अगर आप समझाएंगे तो उसको समझ में आ जाएगी ये बात, क्योंकि उसकी बेस बनी हुई है, वो एक्सपर्ट बन चुका है फिजिक्स के अंदर, तो उसको आइंस्टाइन की थ्योरी समझ में आ जाएगी, दूसरे बंदे को समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तो उसी तरीके से ये मौजा और मैजिक वाला भी यही मामला है, ठीक है। तो बहरहाल, तो जब नबी अलैहि सलाम ने उस चांद को जो है ना वो दो टुकड़े कर दिया, तो फिर इन लोगों ने ना बहाने बनाने शुरू कर दिए, क्योंकि इन्होंने मानना तो था नहीं ना, इनकी तो नीयत ही खराब थी ना, इन्होंने कहा नहीं नहीं ये तो मैजिक है, ये तो मैजिक है, ठीक है। तो भाई नबी अलैहि सलाम ने कहा होगा उस वक्त कि भाई ये मैजिक नहीं है, तो मैंने करके तुम्हें दिखाया है, तो फिर कहने लगे कि अच्छा, तो अगर ये मैजिक नहीं है ना, तो फिर ऐसा करते हैं कि हम वेट करते हैं, जब बाहर से लोग मक्का मुकर्रमा में ट्रैवल करके पहुंचेंगे, हम उनसे पूछेंगे क्या क्या उनको भी ये चांद नजर आया था, टूटा हुआ या नहीं नजर आया था, क्योंकि कहने लगे कि मैजिक जो है ना ये तो थोड़े से लोगों को नजर आ सकता है जो कि हम सामने मौजूद हैं, तुम सबके ऊपर तो मैजिक नहीं कर सकते, जो लोग यहाँ मौजूद नहीं है तुम उनके ऊपर तो मैजिक नहीं कर सकते, तो हम बाहर से आने वालों से पूछेंगे कि उन्होंने देखा था कि नहीं देखा था, क्योंकि उनके ऊपर मैजिक तुम नहीं कर सकते, ठीक है। फिर क्या हुआ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ठीक है भाई, पूछ लेना उन लोगों से भी। तो थोड़े दिन के बाद जब बाहर के जो काफले थे, जो ट्रैवल करके कैरावान्स आ रहे थे मक्का मुकर्रमा में, वो आ गए ना, तो इन लोगों ने उनसे पूछा कि भाई तुमने देखा था वो दो तीन दिन पहले जो वो चांद टुकड़ा हो गया था, तो उन्होंने कहा हाँ हमने सबने देखा था, ठीक है। तो जब उन्होंने ये बात कही ना, तो फिर इन्होंने क्या जवाब दिया, फिर ये मान गए कि हाँ तुम अल्लाह के नबी हो, तुम आप अल्लाह के नबी, नहीं ये फिर भी नहीं माने, फिर उन्होंने क्या कहा, ओहो ये तो बहुत बड़ा मैजिक था, कहने लगे ये तो इतना बड़ा मैजिक था कि जो लोग मौजूद थे उनकी भी आंखों के ऊपर मैजिक हो गया, और जो लोग यहाँ मौजूद नहीं थे उनकी भी आंखों के ऊपर मैजिक हो गया, ये तो बहुत बड़ा मैजिक था, ठीक है ना। तो जिसको बात माननी नहीं होती ना अपने जिद की वजह से और अपने तकब्बुर एरोगेंस की वजह से, तो वो ना फिर कोई ना कोई बिल्कुल स्टूपिड कस्म का एक्सक्यूज बनाता है बात नहीं मानने का, ठीक है। यही इनका इनका मामला ऐसे ही था। अच्छा, अब ये चीज तो वो हो गई ना, लेकिन हमारे दौर के अंदर जिस यानी 21st सेंचुरी में, या हमसे थोड़े दिन पहले 20th सेंचुरी गुजरी है, जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी, बहुत स्पेस ट्रैवल वगैरह सब कुछ बहुत ज्यादा एडवांस हो गया है, तो अब इसमें जो है ना वो बहुत सारे लोग ये कहना शुरू हो जाते हैं कि भाई नहीं नहीं ये कुछ नहीं होता और ये ऐसा नहीं हुआ होगा, ये हो ही नहीं सकता कि चांद जो है दो टुकड़े हो जाए। ठीक है, ये तो फिजिकली पॉसिबल ही नहीं है कि चांद दो टुकड़े हो जाए। तो भाई हम कहते हैं कि भाई पॉसिबल बेशक किसी और के लिए करना नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला के लिए करना तो ये बिल्कुल पॉसिबल है ना। अल्लाह ताला तो चांद को दो टुकड़े करेंगे और फिर बाद में आकर के सबको इस टुकड़े टुकड़े कर देंगे जब कयामत आएगी। तो इसके ऊपर ना एक रिपोर्ट है, अब मैंने कोई बहुत ज्यादा कंफर्म नहीं किया इस बात को, लेकिन इंटरनेट के ऊपर कुछ रिपोर्ट्स वगैरह इस तरह की पड़ी हुई हैं कि जब ये अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स ने लैंड किया था ना चांद के ऊपर जाकर के, वो अपोलो 11 के अंदर, और फिर उसके बाद तो मुस्तकिल स्पेस मिशन जो है वो जाते रहे। ठीक है, तो वहां पर जो चांद के ऊपर फिर उन्होंने बहुत ज्यादा एक्सप्लोरेशन करी कि भाई ये चीज क्या है वगैरह वगैरह, बहुत करते रहते हैं इस तरह की रिसर्च। तो वहां पर ना इनको बाकायदा एक स्प्लिट टाइप की लाइन नजर आई है। ठीक है, जिसकी कुछ पिक्चर्स भी इंटरनेट के ऊपर पड़ी हुई है कि बिल्कुल जैसा ना एक लाइन है जो कि मून के बिल्कुल मिडल के अंदर जाती है। ठीक है, एज इफ के ये यहां से मून टूटा था और फिर उसको बाद में जोड़ दिया गया। ठीक है, तो हो सकता है ये बात सही हो सकता है बात सही नहीं हो, सही नहीं हो ये हमें नहीं पता, लेकिन हमें तो इस बात पे बिल्कुल ट्रस्ट है कि नबी अलैहिस्सलाम ने जो बताया है वो 100% हुआ है, हमें किसी साइंटिफिक एविडेंस की जरूरत भी नहीं है इसके लिए। ठीक है, अच्छा एक और एतराज लोग करते हैं कि अच्छा जब ये मून स्प्लिट हुआ था तो यूरोप में क्यों नहीं नजर आया, और जो है वो अफ्रीका में क्यों नहीं नजर आया, वहां के भी लोगों को नजर आना चाहिए था। ठीक है, तो भाई उसका जवाब ये है कि हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया आपने कि उस वक्त उन जगहों में दिन था। ठीक है, तो चूंकि यूरोप और अफ्रीका के जो कंट्रीज हैं तो वो सऊदी अरब से जहाँ पे मक्का मुकरमा है तो उससे 3 आवर्स और मोर पीछे है। ठीक है, तो वो अगर वहां पर यानी इट्स क्वाइट पॉसिबल कि वहां पर जो है वो अभी रात शुरू नहीं हुई थी, तो इस वजह से लोगों को नजर नहीं आया होगा वहां पर। और दूसरी बात ये कि एक ऑलमोस्ट ऑथेंटिक रिपोर्ट तो हमें इंडिया के बारे में मिलती है। ठीक है, पहले क्लास में हुआ बात इंडिया के बारे में बात हुई ना इस क्लास के अंदर, तो इंडिया में ना या तो वो कहाँ पर था किसी को पता है, वो एक राजा साहब थे, एक स्टेट थी इंडिया में, गालिबन साउथ इंडिया में कहते हैं, कुछ लोग जो है वो ईस्ट पंजाब में भी कहते हैं, इंडियन पंजाब में भी कहते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है वो साउथ इंडिया का कहते हैं। तो वहां पर ना एक स्टेट है, तो वहां का एक राजा था। ठीक है, तो वहां पर लेट नाइट थी क्योंकि इंडिया सऊदी अरब से कितना आ गए, 2.5 आवर्स, आज के हिसाब से देखें तो 2.5 आवर्स वहां पे, यानी ज्यादा लेट नाइट हो चुकी होती है जब यहाँ पर नाइट शुरू होती है। तो वो राजा साहब जो है ना वो अपने घर के बाहर थे और शायद छत पर हो या वैसे ही बाहर, तो उन्होंने जो है ना इस मून स्प्लिट को देखा था। ठीक है, तो उन्होंने जब इसको देखा तो उनको जाहिर है बहुत ही अजीब गरीब किस्म की बात, अच्छा वो इतना लेट नाइट हो चुकी थी कि बाकी सब लोग तो सो चुके थे, किसी वजह से जाग रहे थे, तो इन्होंने फिर दूसरों को भी दिखाया, दूसरे लोगों को भी कि भाई ये क्या है, तो किसी को पता नहीं था कि ये है क्या, कैसे हो गया ये चांद दो टुकड़े। तो उन्होंने ना फिर अपने जो उनके स्टेट में जो 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 स्कॉलर्स रहते थे उनके, ठीक है हर जगह कोई ना कोई तो स्कॉलर्स होते हैं ना, तो वहां पर भी उनके स्कॉलर्स थे, उन्होंने उनसे पूछा कि जी ये क्या हुआ है। तो वहां के भी जो स्कॉलर्स थे उनका भी उसी तरीके से उस जमाने में जैसे किसी का जिन से ताल्लुक है तो कोई जो है वो कुछ अमल वगैरह करता है जिसके जरिए से उसको चीजों को पता चल जाता है, किसी ने बुक्स बहुत ज्यादा पढ़ी हुई होती है तो उस तरीके से पता चल जाता है। तो उन स्कॉलर्स ने देख करके ये उनको बता दिया कि हाँ ये जो है ना एक प्रॉफिट आए हुए हैं मक्का मुकरमा में कि जिन्होंने ये काम किया है। ठीक है, तो जब उस राजा को ये बात पता चली ना तो उस राजा ने एक रिपोर्ट के मुताबिक उसने खुद ट्रैवल किया मक्का मुकरमा, और दूसरी रिपोर्ट यह है कि उसने अपने बेटे को भेजा कुछ लोगों के साथ मक्का मुकरमा, अपने बेटे को भेजा, जब उनका बेटा यहां तक पहुंचा, बहुत लंबा ट्रैवल है जाहिर उस जमाने में तो बोट के जरिए से आए होंगे और फिर लैंड के ऊपर ट्रैवल करते करते, तो जब वो यहाँ पे पहुंचे ना तो नबी अलैहिस्सलाम से बाकायदा उन लोगों की मुलाकात हुई और वो लोग फिर आप के हाथों पर ईमान लेकर के आए, मुसलमान बने। ठीक है, और फिर वो लोग जो है ट्रैवल करके वापस कुछ अरसे के बाद इंडिया पहुंचे, तो जब वहां पे पहुंचे तो उन जो राजा था, अगर वो वाली रिपोर्ट सही है कि राजा ने अपने बेटे को भेजा ना, तो फिर बेटा जब वापस पहुंचा तो उस वक्त तक उसके बाप का इंतकाल हो चुका था। ठीक है, लेकिन कहते हैं कि उनके बाप ने जो है ना वो ये बात कह करके भाई मैं मुसलमान हो गया हूँ, उस प्रॉफिट के ऊपर मैं ईमान लाता हूँ, बाकी सब कुछ तो उसको नहीं पता था, लेकिन मुसलमान हो गया। तो इसका जो बेटा जब वापस पहुंचा तो इसने वहां पर बकायदा एक मस्जिद भी बनाई और लोगों को इस्लाम के बारे में बताया भी। तो ये जो है ना एक इंडियन सहाबी थे, क्योंकि ही मेट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड ही बिकेम अ मुस्लिम। और वो मस्जिद भी कहते हैं कि मस्जिद जो है वहां पर आज भी मौजूद है, उसके आसार वगैरह। तो ये चंद बातें थी द मून स्प्रेड के बारे में। वन ऑफ द टेक्स्ट बुक्स जो कि हमने शुरू में आप लोगों को बताई थी, उसका नाम भी है व्हेन द मून स्प्लिट, इंग्लिश में है वो वाली बुक। अच्छा, तो इसके बाद में ना ये लिखा हुआ है किताब के अंदर, जिसको कि हम मोस्टली फॉलो करते हैं इसके अंदर इस क्लास में, कि एक और बात जो इन लोगों ने, काफिरों ने नबी अलैहिस्सलाम से कहनी शुरू करी ना, वो ये कि भाई आप अल्लाह के नबी हैं, अच्छा तो ऐसा करें ना कि हमारा जो मक्का मुकरमा शहर है ना, तो यहाँ पर इतने सारे पहाड़ हैं, तो इन पहाड़ों की वजह से जो है ना हम यहाँ पर बाग नहीं लगा सकते, हम यहाँ पे वेजिटेशन नहीं कर सकते हैं, दरख्त वगैरह नहीं लगा सकते हैं, ग्रीनरी नहीं होती है हमारे यहाँ। तो ऐसा करें ना, आप अपने अल्लाह से कहें कि मक्का मुकरमा से इन पहाड़ों को हटा दें, ठीक है, ताकि हम यहाँ पर फिर अच्छे से जो है वो गार्डन वगैरह लगाएं और बड़ा अच्छा लगे मक्का मुकरमा, ठीक है, ब्यूटिफिकेशन ऑफ मक्का मुकरमा उनके ख्याल में, ठीक है। और फिर एक और बात भी इन्होंने कही कि आप एक और काम ये करें कि हमारे एंसेस्टर्स में एक बहुत जबरदस्त आदमी गुजरे हैं जिनका नाम था कुसई बिन किलाब, कुसई बिन किलाब, ठीक है। ये कैसे, ये जब हमने वो पढ़ी थी ना आपसे की जो लीनियज थी, फैमिली ट्री जो थी, तो उसके अंदर कुसई बिन किलाब का नाम कहाँ पे आता था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद अब्दुल्ला, दादा अब्दुल मुतलिब, दादा के वालिद हाशिम, और हाशिम के वालिद अब्द मनाफ, माशाल्लाह, ठीक है। और अब्द मनाफ के जो अबू थे ना उनका नाम था कुसई, ठीक है, और कुसई के वालिद का नाम था किलाब, ठीक है, बल्कि टाइटल था किलाब, वो नाम तो उनका कुछ और था। खैर, तो कुसई जो थे ना ये कुरैश में एक बहुत इंपॉर्टेंट शख्स समझे जाते हैं। हाँ, किलाब का मतलब डॉग्स, एग्जैक्टली, ठीक है। तो इनका असल नाम जो था ना वो शायद जैद था या कुछ और था। तो इनको किलाब लोग इसलिए कहते थे क्योंकि ये बहुत ज्यादा ना इनको शौक था उनका हंटर डॉग्स को पालने का, शिकारी कुत्तों को पालने का। तो उन शिकारी कुत्तों की वजह से ना इनको लोगों ने खिलाफ करना शुरू कर दिया था, और ये उस जमाने में बुरा नहीं समझा जाता था, ठीक है। किसी ने कुरैश के किसी शख्स से पूछा कि तुम लोग ना अपने बेटों के नाम ऐसे क्यों रखते हो भाई, किसी का नाम किलाब रख दिया कुत्तों कुत्तों के ऊपर, किसी का नाम जो है वो ज़ेब रख दिया, ज़ेब, ज़ेब किसको कहते हैं, कौफ, ठीक है, वो जो यूसुफ अलैहिस्सलाम को भेड़िया खा गए थे, कोफ्स है ना, तो वहां पे अकला जेब है ना, तो जेब नाम रखते हो तुमने अपने बेटों का, ये किस किस्म का नाम है भैया अपने बेटों का नाम रखते हो, और तुम अपने जो गुलाम है ना, यानी जो तुम्हारे जो स्लेव्स होते हैं उनके नाम बड़े अच्छे रखते हो, ठीक है ना, किसी का नाम जो है वो रबाह रखा, सक्सेसफुल है ना, और किसी का नाम तुमने मरजूक रखा, मरजूक जो है वो कहते हैं द वन हु वाज गिवन सस्टेनेंस, रिस्क जिसको दिया गया है उसको मरजूक कहते हैं, यानी सम वन हु इज वेल फेड। तो तुम अपने गुलामों के नाम जो है ना अच्छे अच्छे रखते हो, और अपने बेटों के नाम जो है वो जानवरों के ऊपर रखते हो, वो भी इस तरह के वहशी जानवरों के ऊपर रखते हो। तो उस बंदे ने इनको इसको जवाब दिया सवाल करने वाले को कि भाई असल में हम अपने जो गुलाम है ना उनके नाम जो है वो अपने लिए रखते हैं, यानी हम ऐसे कि भाई हम अपने गुलाम के साथ जो है गुलाम कि हम अपने गुलामों के नाम इसलिए रखते हैं कि भाई हम अपने गुलामों के साथ बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे तरीके से पेश आते हैं, तो हम अपने गुलामों के नाम बड़े अच्छे अच्छे रखते हैं, ठीक है, बिकॉज वो हम अपने लिए रखते हैं, ठीक है, ये उसने जवाब दिया। और हम अपने बेटों के जो नाम रखते हैं ना वो तो हम अपने दुश्मनों को डराने के लिए रखते हैं, ठीक है, कि ताकि हमारे दुश्मन हमारे बेटों का नाम सुन करके ही डर जाए, ये तो डॉग्स आ रहे हैं भाई हमें खा जाएंगे, ये तो वुल्व्स आ रहे हैं ये हमें खा जाएंगे और हमें मार देंगे, और इस तरह से, ठीक है। किसी का नाम जो है वो कुछ रख लिया, वो फहद, फहद का क्या मतलब होता है, चीता, राइट। अब फहद तो आज भी चल रहा है नाम, माशाल्लाह बादशाह सलामत भी फहद ही थे यहाँ के, ठीक ठीक है, तो इस तरह के नाम। एनीवे तो इनका नाम जो था ना कोसई बिन किलाब था, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शख्स थे। इन्होंने सबसे बड़ा काम ये किया था कि जब ये कुरैश के लीडर बने थे ना, तो उस जमाने में कुरैश के जो लोग होते थे वो मक्का मुकरमा के अंदर नहीं रहते थे, बल्कि बहुत ही स्प्रेड आउट थे। कोई जो है वो गार के अंदर रह रहा है, कोई किसी वादी में रह रहा है, कोई ऐसी पहाड़ के ऊपर रह रहा है, कोई कहीं रह रहा है। तो बहुत ना ये लोग बिल्कुल अलग अलग इस तरह से रहते थे। तो कोसई बिन किलाब ने एक बहुत बड़ा कारनामा ये अंजाम दिया कि उन सारे लोगों को जमा किया और उनको कन्विंस किया कि तुम लोग जो है ना मक्का मुकरमा के अंदर आकर के रहो, ठीक है। और उन लोगों को कहा कि भाई ये सारी जगह मौजूद है काबतुल्लाह के चारों तरफ, इतनी सारी जगह हमारे पास है, तो तुम लोग अपने घर यहाँ पर बनाओ और यहाँ पर आकर के रहना शुरू हो जाओ। तो इन्होंने ना सारे कुरैश को जमा किया था, तो इस वजह से ना ये कुरैश में बहुत ज्यादा इनको रिस्पेक्ट किया जाता था। यही थे जिन्होंने वो कुरैश की एक असेंबली पार्लियामेंट भी बनाई थी, जिसका नाम क्या था,
अच्छा
है दारुन नदवा। एग्जैक्टली, ठीक है, दारुन नदवा एक सोर्ट ऑफ इनकी जैसे गवर्नमेंट थी, छोटी सी मतलब इनफॉर्मल सी गवर्नमेंट थी दारुन नदवा। इसमें ये लोग बैठते थे, आपस में मशवरे करते थे, और ये इम्पोर्टेंट फैसले जो है ना इनके यहाँ इस तरह से हुआ करते थे। तो दारुन नदवा भी इन्होंने ही बनाई थी, ठीक है। तो इस वजह से ना ये बहुत रिस्पेक्टेड फिगर थे। तो इन लोगों ने नबी अलैहिस्सलाम ने कहा से कहा कि आप ऐसा करें ना, अपने अल्लाह से कहें कि कुसई बिन किलाब को वो जिंदा कर दे, और जिंदा करके ना फिर वो आकर के हमें बताए कि तुम अल्लाह के नबी हो, तो फिर हम उसकी बात मान लें। तो इस किस्म के ना वो डिमांड्स रखना शुरू हो गए थे बिल्कुल ही, यानी नबी अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि भाई मैं ना इसलिए नहीं भेजा गया कि मैं मुर्दों को जिंदा करता रहूं, और मैं जो हूँ वो दरख्तों को यानी पहाड़ों को हटाता रहूं, और तुम्हारे लिए दरख्त उगाता रहूं और नहरें चलाता रहूं। ये चीजें तो तुम्हें मिलेंगी जब तुम मेरी बात मानोगे, ठीक है, तो फिर तुम्हें दुनिया के अंदर भी इज्जतें मिलेंगी और आखिरत में भी इज्जत मिलेंगी, लेकिन ये मेरा करने का काम नहीं है, ठीक है। मैं तो तुम्हें अल्लाह की इबादत करवाने के लिए भेजा गया हूँ। खैर, ये बात भी खत्म हो गई इनकी इस तरह की जो स्टूपिड डिमांड्स थी। फिर इस तरह की ये लोग बातें करते थे नबी अलैहिस्सलाम से कि भाई आप जो है ना वो किस किस्म के अल्लाह के रसूल हैं नऊज़ुबिल्लाह, ठीक है, कि आप जो है वो तो हमारी तरीके से खाना भी खाते हैं, आप हमारी तरीके से जो है वो मार्केट्स के अंदर भी चलते हैं, और आप तो शादी भी करते हैं और आपके तो बच्चे भी होते हैं, ये आप ये कौन कौन सा अल्लाह का रसूल हो गया भाई इस तरह का। अच्छा, इमरजेंसी सिस्टम को कोई गवर्नमेंट वाले उसका मैसेज था। अच्छा, तो ऐसा होता है कभी, पता है वो यूएस के अंदर तो हमने देखा भी है कि कभी ना होता है कि कोई बच्चा अगवा हो जाता है, कोई पकड़ करके बच्चों को ले गया ना, तो उन्होंने ये सिस्टम बनाया हुआ है, तो वो फिर ना सारे उस एरिया में जितने लोग रहते हैं उन सबको वो अलर्ट मैसेज भेजते हैं कि भाई एक किडनैपिंग हो गई है, तो सब लोग अलर्ट हो जाएं कि इसका मतलब है कि कोई ना बच्चा उठाने वाला शख्स यहाँ पे घूम रहा है, या इस तरह की कोई और चीज अगर होती है कभी, कोई मर्डर कोई किलर आ जाता है, तो इस तरह एनीवे ये भी उसी तरह की चीज लगाना चाह रहे हैं। देखो आ गया। अच्छा, तो उन्होंने फिर नबी अलैहिस्सलाम से कहा कि भाई आप जो है ना वो ये सब हमारे इंसानों की तरह से आप सारे हैं, आपके पास तो ना तो कोई अल्लाह का कोई फरिश्ता आता है, ठीक है, और ना तो आपके पास कोई बहुत ज्यादा खजाने हैं कि आप बहुत अमीर होते, आपके पास ट्रेजर्स होते, और आपके पास कोई अपना कोई गार्डन होता कि जिसमें से आप खाना तोड़ करके खा लेते, अच्छे अच्छे फ्रूट्स वगैरह तोड़ के खा लेते, तो फिर हम मानते हैं कि आप अल्लाह के नबी हैं, ठीक है ना, आपके पास तो इसमें तो कोई भी चीज नहीं है, ठीक है। तो ऐसी चीजें भी बोलते थे नबी, तो अल्लाह ताला है ना बाकायदा कुरान के अंदर इन चीजों का जिक्र किया है। किसी को आयत को याद है जिसमें अल्लाह ताला ने इस तरीके से जो लोग बोलते थे उनका जवाब दिया है, आयत या कोई आयत का टुकड़ा अल्लाह ताला ना इन बातों को कुरान के अंदर मेंशन करते हैं कि भाई ये लोग जो है, हाँ माशाल्लाह सूरह फुरकान के अंदर आयत तो बताएं थोड़ी, कुरान में ना अक्सर जगहों पे अल्लाह ताला ना इस तरह से व्हाट्स रॉन्ग जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, तो उसके लिए अल्लाह ताला एक खास वर्ड यूज करते हैं, मा लिहाजा, मा लिहाजा, व्हाट इज विद देम, व्हाट इज विद यू। तो ये काफिर के लिए भी अल्लाह ताला ये कहते हैं कि ये लोग कहते थे माल हाजर रसूल, व्हाट इज रॉन्ग विद दिस मैसेंजर, नाउजुल्लाह, व्हाट इज रॉन्ग विद दिस मैसेंजर, याकुलून ताम, ये तो खाना भी खाता है, वो यमशी फिल अस्वाक, और ये तो बाजारों के अंदर चलते भी हैं, ठीक है ना। फिर वो कहते थे कि लौला उन्ज़िला इलैही मलकुन, ये क्यों नहीं होता कि इनके ऊपर कोई फरिश्ता नाजिल होता, फयकून माहू नजीरा, जो इनके साथ साथ चलता और हमें डराता, फरिश्ता कोई इनके साथ चलता और हमें जैसे बहु करके डराता हमें, क्योंकि मैं फरिश्ता हूं और ये अल्लाह के रसूल है, ठीक है। औ युल्का अलैहि कंज़ुन, या ये कि इनके ऊपर ना ऊपर से कोई खजाना नाजिल होता, कंज कहते हैं ट्रेजर को, खजाने को, इनके ऊपर कोई खजाना नाजिल होता, औ तकून लहू जन्नतुन, या इनके लिए कोई बाग होता, गार्डन होता, याकुलु मिन्हा, कि ये अपने ही गार्डन में से खा लिया करते, ठीक है, और हमारे पास आकर के हमारे बाजारों से चीजें नहीं खरीदनी पड़ती इनको, ठीक है। वकाल ज़ालिमूना, और ये जालिम लोग कहा करते थे, इन तत्तबिउना इल्ला रजुलन मसहूरा, मुसलमानों से जो छोटे थोड़े से लोग मुसलमान हो गए थे उनसे ये जालिम लोग कहते थे कि तुम लोग तो एक ऐसे आदमी को फॉलो कर रहे हो कि जो के पोजेस्ड है, यानी जिसके ऊपर जादू हुआ है। कभी कहते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जादू करते हैं, कभी कहते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर किसी और ने जादू कर दिया, ठीक है। तो इस तरह की फजूल बातें ये लोग करते रहते थे, ठीक है। और अल्लाह ताला ना फिर इनकी बातों का कुरान शरीफ के अंदर जवाब भी देते रहते थे। अच्छा, कभी ये लोग कहते थे कि तुम जो रहमान का जिक्र करते हो ना, कुरान के अंदर सूरह रहमान है और जगह जगह अल्लाह ताला ने अपना नाम रहमान और रहमान यूज किया है, तो इन लोगों को पता तो था कि अल्लाह ताला का नाम रहमान भी है, लेकिन अल्लाह ताला को ये रहमान कहते नहीं थे। दे वर नॉट फेमिलियर विद दिस वर्ड वर्ड अलॉट, यानी दे वर नॉट यूज टू कॉलिंग अल्लाह विद द नेम रहमान, ठीक है। तो जब नबी अलैहिस्सलाम सलाम अल्लाह ताला के लिए रहमान का लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे ना, तो इन लोगों को बड़ी तकलीफ होती थी कि तुम ये क्या नया वर्ड इस्तेमाल करते हो अल्लाह ताला के लिए, ठीक है, हम तो नहीं रहमान कहते अल्लाह को। तो उनमें से किसी ने कहना शुरू कर दिया कि ये जो कह रहे हैं ना, जिस रहमान की जो बात करते हैं ना ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ये जो रहमान है ये तो असल में एक आदमी है कि जो कि यमामा में रहता है, ठीक है, ये यमामा में रहने वाला एक आदमी है। यमामा पता है कहाँ है? रियाज वालों को तो पता होना चाहिए। हाँ, यमामा एक जगह है, ठीक है, जहां पर के एक, हाँ, इन्होंने लिखा मुसैलमा कज़्ज़ाब, ठीक है, यमामा इज वेरी वेल नोन फॉर मुसैलमा कज़्ज़ाब, ठीक है। यहां पर एक फैमिली थी बनू हनीफा के नाम से, हाँ, जिसने के नबी अलैहिस्सलाम के आखिरी वक्त में भी उसने ना झूठे नबी होने का दावा कर दिया था, और जब नबी अलैहिस्सलाम दुनिया से तशरीफ ले गए थे तो उसने कहना शुरू कर दिया था कि मैं झूठा नबी हूँ। उसकी पूरी फैमिली वाले उसको सपोर्ट करना शुरू हो गए थे। बहुत बड़ी फैमिली थी ये, और बहुत ज्यादा ये लोग ना फाइटर किस्म के लोग थे, जंगजू किस्म के लोग थे, ठीक है। ये लोग रियाज से बिल्कुल यहाँ से बहुत करीब रहते हैं, ठीक है ना, वादी बनू हनीफा के नाम से जो मशहूर है ये जगह पूरी, तो वहां रहते थे। इसका जो एक एंड है वो जगह यमामा कहलाती है, ठीक है। तो जब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा बने थे ना, तो उन्होंने फिर इसको कत्ल करने के लिए और इसके जो साथी थे उनको शिकस्त देने के लिए बाकायदा सहाबा का लश्कर रवाना किया था, ठीक है, और उन्होंने आकर के इनसे जो लड़ाई लड़ी थी तो बहुत सारे सहाबा भी शहीद हुए थे उसके अंदर, 1500 तो सहाबा शहीद हुए थे, 1500 लेकिन मुशरिकीन जो ये लोग जो थे ना काफिर, ये 30,000 से भी ज्यादा इनको मारा गया था, और मुसैलमा कज़्ज़ाब को भी कत्ल कर दिया गया था उसके अंदर, बहुत ज्यादा, लाइक लाखों में थी, 1 लाख या 2 लाख इनकी तादाद थी। इट्स कॉल्ड द गार्डन ऑफ डेथ, नहीं, नॉट द गार्डन ऑफ डेथ, वहां पर जहां पर ये लड़ाई हुई थी ना, हाँ, वहां पे जो आप कह रहे हैं गार्डन ऑफ डेथ, नहीं, इसको गार्डन ऑफ डेथ नहीं कहते, वहां पर एक जगह है, अब तो खाली पत्थर वहां पे नजर आते हैं, लेकिन उसको कहते हैं वादियो दम, ठीक है ना। दम किस चीज को कहते हैं? है? खून, ठीक है, तो उसको कहेंगे इंग्लिश में क्या कहेंगे, द वैली ऑफ ब्लड, ठीक है, जहां पर इतनी ज्यादा लड़ाई हुई थी कि पूरा वो जो छोटी सी वैली नहीं है, बहुत बड़ी वैली नहीं है, बस छोटी सी ट्रेंच टाइप की जगह है वो खाली, ठीक है, पूरा जगह जो थी ना वो खून से भर गई थी, तो इस वजह से उसका नाम वादियो दम रख दिया गया, ठीक है। तो वहां पर फिर लोगों को मार दिया था। जी, मुसलमान कितने थे? 30,000, 30,000 मुझे याद पड़ता है शायद मुसलमान थे, ठीक है, या 50,000, उससे ज्यादा नहीं थे, 30,000 मुझे याद पड़ता है। लेकिन जो काफिर थे ये 2 लाख या 1 लाख से ज्यादा थे, ठीक है। तो बहुत मुश्किल से इन लोगों को फिर मुसलमानों ने शिकस्त दी थी। तो खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु जो है वो आए थे। पहले पहले तो अबू बकर सिद्दीक ने हजरत शर्जील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ एक ट्रूप ट्रूप्स को रवाना किया था, ये लोग नहीं जीत सके थे। फिर बाद में ना शर्जील की हेल्प के लिए खालिद बिन वलीद को भेजा था, और उन्होंने फिर आकर के जब कमांड ली, फिर उन्होंने लड़ाई करी, और बहुत उसकी बड़ी डिटेल है, ये जगह भी मौजूद है, जाकर के कभी देखनी चाहिए। एक है यमामा सीमेंट फैक्ट्री यहाँ पर, ठीक है। लेकिन यमामा सीमेंट फैक्ट्री जो है ना वो यमामा में नहीं है, वो बिल्कुल ऑपोजिट है, यानी यमामा इस कोने पर है तो सीमेंट फैक्ट्री उस कोने पर है, बिल्कुल डायरेक्टली ऑपोजिट साइड पर है, ठीक है। तो वो यमामा सीमेंट फैक्ट्री से नहीं समझिएगा कि वहां पे यमामा है, यमामा बिल्कुल उसी साइड पर है। एनीवे, तो बहुत जबरदस्त वो जंग हुई थी, उसके अंदर 1500 सहाबा शहीद हुए थे, जिनके अंदर से 500 जो थे ना वो हुफाज कुरान थे, हाफिज कुरान सहाबा थे 500 उनमें से। पूरा कुरान सबको याद नहीं था, किसी सहाबी को कुछ सूरतें याद थी, किसी को कुछ सूरतें याद थी, ये जो 500 थे ना इनके अंदर, ये तो पूरे कुरान के हाफिज थे, ठीक है। इन्हीं के शहादत के बाद फिर हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ने हजरत अबू बकर सिद्दीक से कहा कि अगर इतनी बड़ी तादाद में हुफाज कुरान शहीद होते रहे तो भाई कहीं ऐसा ना हो कि कुरान जो है वो खत्म हो जाए हमारे हमारे पास से, क्योंकि उस वक्त तक कुरान जो है ना वो एक बुक फॉर्म में कंपाइल नहीं हुआ हुआ था, ठीक है। सिर्फ सहाबा को जो है वो या तो याद था या सबने अपने पास थोड़ा 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 करके रखा हुआ था, ठीक है ना, तो एक बुक फॉर्म में नहीं था। तो अबू बकर सिद्दीक ने पहले तो बात सुनकर के ये फरमाया कि भाई जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये काम नहीं किया कि कुरान को इस बुक फॉर्म में कंपाइल करने का, तो मैं कैसे करूँ ये काम ना। लेकिन उन्होंने फिर उनको समझाया कि नहीं, इसकी जरूरत है, और ये कोई बुरी बात नहीं होगी बल्कि ये अच्छी बात होगी, ठीक है, क्योंकि हम इसको दीन को प्रिजर्व करने के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अबू बकर सिद्दीक फिर बात उनको समझ में आ गई, तो उन्होंने फिर हजरत जैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो एक सहाबी थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में रहते थे, है ना, तो उनको जो है ना वो एक टीम लीडर बनाया, क्योंकि वो पूरे कुरान के हाफिज थे, और उनके साथ बहुत सारे दूसरे सहाबा को जो के हाफिज थे उनकी टीम में दिया, और फिर इन लोगों ने मिल करके सारे सहाबा से उनकी लिखे हुए कुरान की कॉपीज वगैरह ली और उनको एक बुक फॉर्म के अंदर कंपाइल करके बना लिया। जैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है वो अभी तक तो शहीद नहीं हुए, और वैसे जैद के नाम के और भी सहाबा थे, ये जैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे ना, जैद बिन हारिसा भी थे एक, तो इन दोनों में से ये वाले कौन से थे, ये जैद बिन साबित थे, जैद बिन हारिसा शहीद हो गए होंगे, और वैसे भी दूसरे नाता है इसके ऊपर। हाँ, वो कौन सी जंग थी, जंगे नहीं, मामा में तो अच्छा, खैर ये तो एक जमनी बात शुरू हो गई थी। अच्छा, तो यमामा वो उसने कहा एक बंदे ने कि भाई ये जो रहमान तुम कहते हो ना, तो रहमान तो यमामा का रहने वाला एक आदमी है, और तुम उससे जो है ना बस ये सारी चीजें सीख रहे हो। तो खैर उसके ऊपर भी अल्लाह ताला ने जवाब दिया, सूरह रात की आयत लिखी हुई है कि उसमें कि आप कह दीजिए कुल हुआ रब्बी, कि कह दीजिए कि वो मेरा रब है, ला इलाहा इल्लाहू, उसके अलावा और कोई इबादत के लायक नहीं है, अलैहि तवक्कल, तो उसी के ऊपर मैं तवक्कुल करता हूँ, भरोसा एतमाद करता हूँ, वह इलैहि मताब, और उसी की तरफ मुझे लौट के जाना है। तो इस तरीके से इनकी बातों का जवाब दे दिया करते थे। अच्छा, और भी इस तरह की फजूल बातें करते रहते थे ये लोग कि आप पहाड़ को सोने का बना दें और एक सीढ़ी लगा करके ना आसमान तक चढ़ जाएं, फिर हम जा करके देखेंगे आसमान के ऊपर के भाई अल्लाह किधर है और वगैरह वगैरह। अच्छा, फिर इसके बाद ना एक और बड़ा वाकया क्या पेश आया कि जिसकी तफसील तो पहले ही हम इस क्लास के अंदर बहुत पहले कर चुके हैं, वो क्या कि ये लोग जो है ना इन्होंने तो सोच लिया था कि भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना इनको हमने किसी तरीके से ना बस तंग करना है, परेशान करना है, बात हमने नहीं माननी इनकी, हमें बात माननी नहीं है, और हमने ना इनको किसी तरीके से हराना है, क्योंकि एक तरह से फाइटिंग शुरू हो गई हमारी इनके साथ, तो हम इनको हराए ना किसी तरीके से। तो अब इनको कुछ समझ में नहीं आया ना, तो उन्होंने क्या किया कि अपने दो आदमी जो है ना वो भेजे मदीना मुनवरा, उस जमाने में जिसका नाम यसरब था, ठीक है। तो यसरब में इनको पता था कि वहां पे बहुत सारे यहूदी रहते हैं, ज्यूज है ना, वो ज्यूज जो है वो ये मदीना मुनवरा आकर के सेटल हुए थे, बिकॉज उनको पता था कि आखिरी नबी अल्लाह के जो है ना वो आएंगे इस जगह के ऊपर, ठीक है। उन लोगों के अंदर बहुत ज्यादा लोग पढ़े लिखे थे, तौरात के स्कॉलर्स थे, हत्ता कि इंजील भी उन्होंने पढ़ी भी होगी, बिकॉज स्कॉलर जो होते हैं फिर वो हर तरह की किताबें पढ़ते हैं, इवन उन किताबों को भी पढ़ लेते हैं जिनके ऊपर वो ट्रस्ट नहीं करते। तो यहूदी तौरात के ऊपर तो बिलीव करते थे, वो तो उन्होंने अच्छी तरीके से पढ़ी हुई थी, लेकिन दूसरी किताबें भी उन्होंने बहुत सारी पढ़ी हुई थी। तो खैर इनको पता था कि जी यहूदी जो है ना ये तो स्कॉलर्स हैं, और अल्लाह के कितने 10,000 कम से कम 10,000 नबी तो इनकी फैमिली के अंदर आए हैं। तो हम इनसे जाकर के पूछते हैं कि क्या करें यार इसका, हम ये जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना इनका हम क्या करें, ठीक है। तो वो लोग जब गए ना तो उन्होंने यहूदियों से कहा कि भाई कोई ऐसी बात बताओ कि हम ना इसको चुप करा सकें किसी तरीके से, ठीक है। तो उन्होंने कहा, पहले तो ये पूछने लगे कि ये बताओ कि ये जो बंदा क्लेम कर रहा है ना प्रॉफिट होने का, तो इसके ऊपर कोई बिलीफ करता है, किसी ने इसकी बात मानी है, तो वो कौन लोग हैं जिन्होंने इसकी बात मानी है। तो उन्होंने जवाब दिया कि भाई हमारे कुछ गरीब और ऐसे किस्म के लोग हैं तो उन्होंने इसकी बात मान ली है। तो फिर उन्होंने कहा यहूदियों ने इनसे कि तुम लोग ऐसा करो कि वापस जाओ मक्का मुकरमा और हम तुम्हें 3 क्वेश्चंस बताते हैं, ठीक है, समझ गए होंगे ये कौन सा वाला वाक्य है, सही है। तो हम तुम्हें 3 क्वेश्चंस बताते हैं, ये तीनों जाकर के उनसे पूछना, तो अगर वो इनका ऐसे ऐसे जवाब दे दे जैसे हम तुम्हें बता रहे हैं ना, तो फिर तुम समझ लेना कि अल्लाह के नबी हैं, और अगर ऐसा जवाब ना दें तो फिर तुम इनको कत्ल कर देना, मार देना, फिर इतना खत्म, ठीक है, क्योंकि ये झूठी नबूवत का दावा कर रहे हैं, सही। हाँ बिल्कुल। तो वो 3 क्वेश्चंस क्या थे, पहला क्वेश्चन जो था कि अस्हाबुल कहफ कौन है, ठीक है, जिस अच्छा खैर वो आगे बात करेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या था जी, दूसरा क्वेश्चन, हाँ यहाँ पे कोई ऑनलाइन क्लासेस में, दूसरा दो और क्वेश्चन है तो ऑनलाइन क्लास में बताएगा। हाँ जुल्कारनैन कौन थे, और तीसरा क्वेश्चन ये कि रूह क्या है, ठीक है, रूह क्या है, जुल्कारनैन कौन थे और अस्हाबे कहफ कौन थे, ठीक है। तो इन्होंने बता दिया कि भाई ऐसा ऐसा जवाब अगर वो दें तो ठीक है, वरना अच्छा रूह के बारे में इन्होंने इन लोगों को बता दिया था कि देखो हमारी किताब जो तौरात है ना उसके अंदर भी रूह का जवाब यही है कि ये अम्रु रब्बी है, ये अल्लाह का हुक्म है बस, अगर ये उससे ज्यादा कोई बात तुम्हें बताए ना तो समझ लेना कि ये झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। और असहाबे कहफ वगैरह के बारे में, तो फिर अब ये लोग वापस आए और इन्होंने आकर के फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल पूछे, बताओ ना जरा आपने अल्लाह से पूछ करके ये तीनों सवालों के जवाब। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ना उस वक्त एक भूल हो गई, भूल चूक जिसको कहते हैं, ठीक है। वो क्या भूल हो गई कि हाँ पता है सबको पता है, लेकिन आपको पूरा जवाब नहीं पता या याद नहीं होगा, जब हमने सूरह कहफ की तफसीर जो हमारी चली है, ठीक है, जिन लोगों ने वो तफसीर सुनी नहीं है ना, क्लास अटेंड नहीं करी थी, तो कोशिश करें कि रमजान मुबारक में अगर थोड़ा थोड़ा करके उस क्लास को सुनना शुरू करें। तो वेबसाइट अभी लिखी थी ना rememberallah.org, तो उसमें एक है बटन क्लासरूम्स, उसके अंदर ये सारी क्लासेस पड़ी हुई हैं सूरह कहफ की, ठीक है। तो उसमें बहुत ज्यादा डिटेल में हमने बातें करी थी इस के बारे में। तो नबी अलैहि सलाम से भूल ये हो गई थी, सबको पता होगा कि इंशाअल्लाह नहीं कहा, ठीक है। ये नहीं था कि नबी अलैहि सलाम ये सोच रहे थे कि मैं खुद ही रिसर्च करके, उस हमने क्लास में बात भी करी थी कि मैं शेख गूगल पे जा करके सर्च करूंगा और मुझे पता चल जाएगा, है? या मैं जो है वो लाइब्रेरी में जा करके सर्च करूंगा, मैं उसका जवाब निकाल करके बता दूंगा। नहीं, नबी अलैहि सलाम को पता था कि उनको इन क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं पता, उनको पता था कि अल्लाह ताला ही ने उनको जवाब देना है ना। ये बात तो नहीं थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूल गए थे अल्लाह ताला को, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ नाउज बिल्ला कोई गलत बात कहना शुरू हो गए थे, लेकिन सिर्फ जुबान से इंशा अल्लाह नहीं कहा था, सिर्फ ये एक भूल हुई थी, जुबान से इंशा अल्लाह नहीं कहा, ठीक है। लेकिन अल्लाह ताला ने इसको भी जो है ना वो फिर छोड़ा नहीं, क्योंकि जो बहुत इंपॉर्टेंट लोग होते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छे लोग होते हैं, तो उनसे फिर ना छोटी सी मिस्टेक भी छोड़ी नहीं जाती, है ना। तो नबी अलैहिस्सलाम से छोटी सी जो मिस्टेक हुई तो उसके ऊपर क्या हुआ कि नबी अलैहिस्सलाम ने कह दिया था कि जी कल मैं तुम्हें बताऊंगा, तो कल आया और जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए नहीं बताने के लिए, तो काफिर तो पहुंच गए कि हाँ भी बताओ तुमने कहा था ये कल बताऊंगा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई जवाब नहीं था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऑब्वियसली बहुत एम्बैरस फील किया और आपको तो बहुत दुख हुआ कि भाई क्या हुआ क्यों नहीं आए वगैरह। 15 दिन गुजर गए, एवरी डे दे वुड कम एंड टॉर्चर नबी अलैहिस्सलाम, एवरी डे हर दिन आते रहे बोलते रहे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई जवाब नहीं होता था, बोलते रहे बोलते रहे बोलते रहे, हत्ता कि 15 दिन गुजरने के बाद फिर अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा, और जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर के फिर सूरह कहफ पूरी की पूरी, इतनी बड़ी सूरत है ना, 15 पारे के अंदर शुरू होती है और 16वें पारे तक जाती है, तो इतनी बड़ी सूरत जो है वो एक साथ पूरी की पूरी सूरत नबी अलैहिस्सलाम को अता फरमाती, और उसके अंदर फिर इन सवालों के जवाब भी थे। अलबत्ता दो सवालों के जवाब थे इनके अंदर, फिर तीसरा जो सवाल था रूह, उसका जवाब किसमें, सूरह बनी इसराइल में, जो कि सूरह कहफ के बाद है, ठीक है, पहले, हाँ पहले, खुदा को मतलब, ठीक है। तो अच्छा, अब जब ये नाजिल फरमाई ना सूरह कहफ जो है, इट वाज 40 डेज, नहीं, 40 नहीं, 15 डेज बता रहे थे अभी आपको, 15 डेज तक वेट किया। अच्छा, तो इसके अंदर फिर अल्लाह ताला ने ये आयात भी आप ससुरों को दी कि क्या है, वला तकूलन्ना लिशयइन, कि आप कभी भी नहीं कहिएगा कोई चीज भी कि इन्नी फाइलुन जालिका गदन, कि कल मैं ये काम कर लूंगा, कभी भी ऐसी कोई बात नहीं कहिएगा कि मैं कल ये काम कर लूंगा, इल्ला अय्यशा अल्लाहू, सिवाय इसके कि आप ये भी कहें कि अगर अल्लाह ताला ने चाहा तब मैं ये काम कल कर लूंगा, ठीक है। तो फिर उसके बाद फिर सारी तफसीलात मिल गई सूरह कहफ के अंदर, वो सब की सब मौजूद हैं, और उसकी तफसीर के अंदर और भी ज्यादा तफसील मौजूद है सूरह के असहाब कहफ के बारे में, जुल्कर्नैन के बारे में, तो वो तो हम सीरत की क्लास के अंदर अब उसको रिपीट नहीं करते हैं, तो किसी को अगर वो चीजें पढ़नी हो तो बुक्स में जाकर के पढ़े, या ये कि रिकॉर्डिंग जो पड़ी हुई है सूरह कहफ की वेबसाइट के ऊपर, तो वहां पे जाकर के सुन लें, ठीक है। जजाकुमुल्लाह जिन्होंने वेबसाइट की एड्रेस को यहाँ कॉपी कर दिया। अच्छा, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है इन सब बातों के बारे में, या इवन ये जो सूरह कहफ की बातें हैं इनके बारे में किसी को अगर कोई क्वेश्चन है तो फिर हम उसको एड्रेस कर सकते हैं। चले, अगर क्वेश्चन नहीं है तो हम आगे चलते हैं, कि अब इसके बाद जो एक सब टॉपिक हमारा स्टार्ट हो रहा है इस क्लास में, तो ये है कि नबी अलैहिस्सलाम ना पर्सनली जो है वो कुछ स्ट्रॉन्ग हो गए थे ना अब इन लोगों के दरमियान, ठीक है। याद है कि पहले ये लोग नबी अलैहिस्सलाम को फिजिकली बहुत ज्यादा टॉर्चर करने की कोशिश करते थे, ठीक है ना, उसने ला करके जानवर की ओझड़ी रख दी नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर, और फिर पता नहीं क्या क्या पत्थर भी मारने की कोशिश करी वगैरह वगैरह इस तरह के। फिर उसके बाद जब हमजा रजी अल्लाह तआला मुसलमान हो गए तो उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम को फिजिकली टॉर्चर करना छोड़ दिया, ठीक है, और कमजोर मुसलमानों को टॉर्चर करना शुरू कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाली हमने टॉपिक पढ़ा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो है वो इस तरह के मोजजात वगैरह की डिमांड करनी शुरू कर दी, ठीक है। अब इसके बाद जो है ना वो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है कि नबी अलैहिस्सलाम जो है ना वो अब इतने आहिस्ता आहिस्ता स्टैब्लिश हो रहे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो इन यानी जो कमजोर लोग थे ना उनकी मदद भी करनी शुरू कर दी लोगों इन लोगों के खिलाफ, ठीक है। तो अब वो फेज शुरू होता है कि जिसमें नबी अलैहिस्सलाम ने कमजोरों की मदद करनी शुरू करी इन लोगों के खिलाफ। वैसे तो कमजोरों की मदद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले भी किया करते थे, ठीक है ना, कभी किसी का काम कर दिया कभी किसी का काम कर दिया, लेकिन इन जालिमों के खिलाफ लोगों की मदद करनी शुरू कर दी। वो कैसे कि एक वाकया ये है कि एक दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद सहाबा के साथ मस्जिद हराम में बैठे हुए थे कि वहां पर ना एक आदमी आया जो कि कबीला जुबैद का रहने वाला था या जबीद का रहने वाला था, तो वो आकर के ना इन लोगों से कहने लगा कि भाई तुम लोग मक्का मुकरमा के अंदर कैसे तुम लोगों का काम चलेगा, तुम्हारे यहाँ तो लोग इतना जुल्म करते हैं। तो लोगों ने उससे पूछा कि भाई क्या हुआ तुम्हारे ऊपर, किसने जुल्म किया, तो उसने कहा कि भाई मैं ना असल में बाहर से आया हूँ, मैं तो यहाँ नहीं रहता, मैं बाहर का बंदा हूँ, वहां से मैं 3 ऊंट लेकर के आया था कि मैं मक्का मुकरमा में बेचूंगा, और मुझे कुछ पैसे मिलेंगे तो मैं प्रॉफिट लेकर के वापस जाऊंगा। ठीक है, तो यहां पर आकर के ना मुझसे अबू जहल ने जो है वो एक डील कर ली कि मैं तुम्हारे ऊंट खरीद दूंगा, लेकिन वो तो मुझे पैसे ही नहीं दे रहा, ज्यादा बहुत कम उसने पैसे लगाए हैं। ठीक है, और मुझे तो बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है, और मैंने फिर दूसरे लोगों से बात करी है तो कोई मेरी मदद ही नहीं कर रहा, क्योंकि अबू जहल तो तुम लोगों का सरदार है तो कोई मेरी मदद नहीं कर रहा। तो उस वक्त ना नबी अलैहि सलाम ने उससे कहा कि अच्छा ठहरो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। ठीक है, तो आप सलाम ना उसके साथ गए, और वो जो ऊंट लेकर के आया हुआ था जिसकी अबू जहल ने बहुत ही कम प्राइस लगाई हुई थी, यानी बहुत कम ऑफर किया था उसकी प्राइस ना ऊंटों की, तो नबी अलैहि सलाम ने ऊंटों को देखा तो बहुत अच्छे ऊंट थे वो, तो आप सलाम ना उनकी बहुत अच्छी प्राइस लगाई और उसको फिर बाकायदा वो पेमेंट कर भी दी और उन ऊंटों को खरीद लिया। इससे वो बंदा बहुत खुश हुआ कि अच्छा भी मुझे तो इतना प्रॉफिट मिल गया, अब तो मैं घर जाऊंगा और मैं खूब मजे करूंगा इन पैसों से। लेकिन नबी रसूलुल्लाह ने क्या किया कि उन ऊंटों में से ना दो ऊंट जो है तो वो तो फिर किसी और को बेचे, और उससे जो पैसे थे वो गरीबों में बांट दिए। ठीक है, बेवाओं में, औरतों में बांट दिए, और एक ऊंट जो है वो अपने पास रखा। और फिर ना नबी रसूलुल्लाह सलाम अबू जहल के पास आए, वो बैठा हुआ था कहीं पर। नहीं 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 कस्बा तो बिल्कुल बाद में आएगी, ठीक है, आपसे भी कस्बा की बात करनी। तो फिर ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू जहल के पास आए और उससे कहा कि खबरदार, अमर नाम था ना इसका, अमर बिन हिशाम नाम था इसका, तो खबरदार अमर, अगर तुमने आइंदा ऐसी हरकत करी ना तो मैं तुमसे बहुत सख्ती से पेश आऊं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको थ्रेट करके चले गए अबू जहल को, हालांकि अबू जहल आप से उम्र में भी बहुत ज्यादा था और उन लोगों का बड़ा लीडर था और लोग बड़ी उसकी रिस्पेक्ट किया करते थे, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि बहुत बड़ा दुश्मन था। तो अब जो है ना उसने जब ये बात सुनी ना नबी सल्लल्लाहु से, तो वो ना फिर यानी डर गया एकदम से और कहने लगा कि हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, मैं आइंदा ऐसा नहीं करूंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा। बाकी लोग बैठे हुए थे देख रहे थे इसको कि भाई क्या हो गया अबू जहल को, इतना डर कैसे गया। तो जब आप चले गए ना तो लोगों ने उससे पूछा कि तुम्हें क्या हो गया, तुम इतने बेवकूफ डरपोक कैसे बन गए तुम, कि तुम एकदम से डर करके बोले हाँ आइंदा मैं ऐसे नहीं करूंगा। तो कहने लगा कि मैंने ना देखा कि जब ये मेरे पास आए थे ना तो इनके पीछे जो है ना बहुत सारे लोग खड़े हुए थे, जिनके पास जो है वो किसी के पास नेजा था, किसी के पास तीर कमान था, किसी के पास कुछ था, और अगर मैं इनको कुछ कहता ना तो वो सारे के सारे लोग मेरे ऊपर हमला करके मुझे तो गोटियां बना देते। तो मैं तो डर के मारे मैंने कह दिया कि हाँ मैं आइंदा नहीं करूंगा इसको। तो किसी और को ऐसे लोग नजर नहीं आए थे, लेकिन अब जो है ना अल्लाह ताला ने इस तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद करनी शुरू करी। पहले भी ऐसी हुई थी कि जब वो अटैक करने के लिए जाता था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, है ना, तो रास्ते में कभी उसको आग की खंदक नजर आती थी, कभी उसको एक बड़ा सा ऊंट नजर आता था, तो वो अटैक नहीं कर पाता था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके ऊपर काउंटर अटैक कर रहे हैं, फिजिकली नहीं लेकिन वर्बली काउंटर अटैक कर रहे हैं, और अल्लाह ताला इसकी आप सल्लम की ऐसे मदद कर रहे हैं कि इसको फिर ऐसी चीजें दिखाते हैं। उसी तरीके से दूसरा वाकया लिखा हुआ है कि एक यतीम था, यानी जिसके बाप के इंतकाल हो जाते हैं उसको यतीम कहते हैं, तो अबू जहल ने ना उसको ट्रिक किया और कहा कि हाँ हाँ तुम यतीम हो गए हो तो मैं तुम्हारी टेक केयर करूंगा, मैं तुम्हारी सारी चीजें, ठीक है। लेकिन फिर ना उस यतीम का माल अबू जहल ने खुद ही जो है ना वो कब्जा कर लिया उसके ऊपर और यतीम को छोड़ दिया। तो वो यतीम लड़का भी जो है वो आप सल्लम के पास आया और आप सल्लम ने कहा कि मेरी आप मदद कीजिए, मेरा माल वापस दिलवा दीजिए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको लेकर के अबू जहल के पास पहुंचे और उसे कहा कि इस यतीम का माल वापस कर दो। अबू जहल ने फौरन उसका जो पैसा वैसा माल था वो फौरन उस लड़के को दे दिया। तो अब बाकी लोग फिर हैरान कि भाई क्या हो गया अबू जहल को, उन्होंने कहा कि क्या हो गया, तुम इतने बुजदिल कब से हो गए, फौरन ही उस यतीम को तुमने माल दे दिया। तो उस पर उसने कहा कि तुम्हें नहीं मालूम नबी ये जो मोहम्मद सल्लल्लाहु जब मेरे पास आए ना तो उनके लेफ्ट और राइट के ऊपर बड़े खतरनाक किस्म के लोग थे और ऐसे अजीब 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 उनके पास ये वेपन्स थे, तो अगर मैं ना करता ना तो फिर तो मुझे मार देते। इसी तरह एक और वाकया भी है, एक मिनट पहले बस ये खत्म हो जाता है कि एक कबीला खसअम, तो वहां का भी एक बंदा था उसके साथ भी इसी तरह का, अबू जहल ने बहुत बुरा मामला किया था तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको भी उसका हक दिलवा दिया था। अच्छा, इसके बाद ना टाइम तकरीबन खत्म होने वाला है क्लास का, तो कोई आप क्वेश्चन पूछ रहे तो पूछ लें। नहीं, वो फरिश्ते होते थे, बाकी लोग उनको नहीं देख सकते थे, सिर्फ अबू जहल को नजर आते थे, क्योंकि
अगर वो अबू जहल को मारते थे तो
अगर वो अबू जहल को उस वक्त मार देते तो फिर तो बाकी लोगों को नजर आता, वो मरा हुआ नजर आता, ठीक है। तो आपको पता होगा ना कि बदर की जो लड़ाई थी तो उसमें भी जो मुसलमान थे वो तो तलवार चलाते थे, लेकिन तलवार चलाने से पहले ही फरिश्तों की तलवार से काफिरों की गर्दन कट जाती थी, ठीक है। ये बदर की जंग के अंदर ऐसा हुआ था, लेकिन जो लोग थे उनको तो वो नजर आता था ना कि हाँ भी ये गर्दन कट गई। अब वो खुद ही हैरान हो रहे होते थे कि हमारी तलवार ने तो उसको मारा ही नहीं, ये पहले से कैसे मर करके गिर गया, लेकिन नजर आता था ना लोगों को, ठीक है। तो ऐसा फिर जब फरिश्ते ऐसा करते हैं तो फिर नजर आता है, क्योंकि फरिश्ते तो नूरानी मखलूक है, वो नजर नहीं आते, लेकिन फरिश्ते अगर हमारे ऊपर कोई काम करें तो हम तो नूरानी मखलूक नहीं है ना, ग्रीन पगड़ी पहन लेंगे तो नूरानी मखलूक हो जाए कराची के अंदर जैसे नहीं, तो हम तो नहीं है नूरानी मखलूक, चाहे हम ग्रीन पगड़ी पहने या व्हाइट पगड़ी पहने, ऐसे नूरानी तो लग रहे हैं बहुत भाषण, मतलब नूर वाले, नूरानी से मतलब नूर वाले। तो खैर नजर आता है जब फरिश्ते कोई काम करते हैं ना। अच्छा चले, और फिर वाकई हम फिर अगली क्लास में पढ़ेंगे जो कि इंशाल्लाह रमजान मुबारक के बाद होगी। अभी भी इरादा है कि हम इस पूरी क्लास की एक समरी बना करके फिर क्लास में आप लोगों को दिखाएंगे, अभी तक तो मुमकिन ही हो सका, लेकिन उम्मीद करते हैं कि रमजान मुबारक में अल्लाह मौका दे देगा तो समरी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करने से पहले पूरी हम समरी पढ़ेंगे, यानी हेडलाइंस के हमने ये टॉपिक्स कर लिए हैं, और ये इंशाल्लाह उस वक्त फिर ये हमारा प्रोजेक्टर भी इस्तेमाल होगा, अभी तक तो ऐसे खाली पड़ा रहा है 3 हफ्तों से। चले किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है तो क्लास हम खत्म करते हैं, लेकिन बस आखिरी बात ये कि रमजान मुबारक शुरू हो रहा है तो जो रोजे रख रहे हैं तो जरूर रखें, जिनको के यानी जो इतने बड़े हो गए कि वो फर्ज हो गया उनके ऊपर रोजा तो वो रखें, और जो करीब हैं बड़े होने के तो वो भी अपने अम्मी अब्बू से पूछ करके अम्मी अब्बू की इजाजत से थोड़े थोड़े रोजे रखने शुरू करें, ठीक है। बेशक आपके ऊपर फर्ज नहीं भी हुए हैं तो भी थोड़ा थोड़ा करना शुरू करें, और जो उनसे भी छोटे हैं, ठीक है, जो उनसे भी छोटे हैं तो वो अपने अम्मी अब्बू की इजाजत से दिन के अंदर 2 या 3 रोजे रख सकते हैं, ठीक है, चंक्स के अंदर, कि आप सुबह को नाश्ता कर लें उसके बाद फिर कुछ ना खाएं, और फिर 5-6 घंटे के बाद दोपहर को जो खाना खाएं तो फिर वो आपका एक रोजा हो गया सुबह का, और दूसरा रोजा जो है वो दोपहर के खाने के बाद से शाम के इफ्तार तक ये दूसरा रोजा हो गया। तो इस तरीके से ना थोड़ा थोड़ा करके रोजा रखने की फिर आदत स्टार्ट करें, और फिर दुआओं में सबको याद रखें हमें भी पास, ठीक है। आखिर आपने व्हाट्सएप कर दिया ना तो आपको कर लेंगे।